हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 29, 30 एंड 31। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा। आराध्यो भगवान् मृजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम भूमर्थो महान्, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम्, तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा, नवनीरधाभा पीतांभर दरुण बिंब फल धरोष्टा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवी, वेदेसाङ्गपत् क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయామి ధీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ యుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నష్టికీ పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవత మహాపురాణకి జయ. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 18 జిస్కా శీర్షక్ హై బ్రహ్మణ బాలక్ ద్వారా మహారాజ పరీక్షిత్ కో శాప. ఆజ్ హమ్ శ్లోక్ నంబర్ 29 పడేంగే. ఉసే పెహలే హమ్నే ఇస్ కథా కో స్టార్ట్ కర్తే సమయ जिसे सूत गोस्वामी ने बताया कि क्या हुआ था. श्लोक नंबर 24 से यह कथा स्टार्ट हुई जिसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगानुगतं शान्त क्षुदितस्त्रिषितो विषम. एकदा धनुरुद्यम्य, एक बार धनुष तथा बाण को दृढ़ता से उद्यम्य धारण किया, विचरण मृगयाम वने और शिकार के लिए वो महाराजा परीक्षित वन में विचरण कर रहे थे. तो मृगानुगत शांत और मृग जो शिकार करने के लिए हिरण का पीछा कर रहे थे, अनुगत मतलब उसका पीछा करते करते बहुत ज्यादा थक गए, शांत गए, शांत माना थक गए और साथ साथ क्षुधित स्त्रिशों उनको बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा प्यास लगी, विषम बहुत अत्यधिक उनको व्याकुल करने लगी. और उसके बाद जलाशयम अचक्षाण, जलाशय को ढूंढते ढूंढते वो प्रविवेश तमाश्रम, एक आश्रम के अंदर प्रविष्ट हुए और वो आश्रम था शमीक मुनि का. ददर्श मुनिमासीनम, उन्होंने देखा कि मुनि जो वहां पर आसीन है बैठे हुए, कैसे शांतम मिलित लोचनम, शांत और आनंद से अपने नेत्रों को मूंद कर बैठे हुए. तो उसके बाद क्योंकि महाराज परीक्षित बहुत ज्यादा थके हुए थे और प्यासे थे, उन्होंने जब उनको देखा उस वो मुनि महाराज के विषय में बताते प्रति हृदय प्राण, उन्होंने अपनी इंद्रियों के प्राण के मनोबुद्धि उपारथम और मन और बुद्धि को निश्चेष्ट कर दिया था, रोका हुआ था, ना वो सांस ले रहे थे ना ही कुछ क्रिया कर रहे थे. स्थान त्रयात् परम प्राप्तम, और फिर वो तीन स्थानों से ऊपर थे, यानी जागृत सुप्त और सुषुप्त की स्थितियों से अलग होकर ब्रह्मभूतम अविक्रम, ब्रह्मभूत स्थिति को यानी समाधि को प्राप्त थे. और साथ में उनकी वेशभूषा के विषय में बताया विप्रक्रिया जटाचन्नम, उनकी जो जटाएं थी लंबी लंबी वो उनके पूरे शरीर पर फैली हुई थी, रौरवेणाजिनेन च, और वो एक मृग छाला पर यानी हिरण की छाला के ऊपर बैठे हुए थे. लेकिन उनकी इस समाधि को देखकर भी महाराजा परीक्षित की तो स्थिति वही थी ना, वो क्या थे, विशुष्या तालु रुदकम, प्यास के मारे उनका जो तालु था वो भी सूख गया था, कंठ तक वो बिल्कुल सूख गए थे. और तथा भूतम मयाचतम, और बहुत ज्यादा मतलब उनको कष्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने उससे पानी मांगा, जो ऋषि बैठे हुए थे तपस्या कर रहे थे उनसे पानी मांगा, लेकिन अलब्ध तीर्ण भूमि आदि उनको प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ना उनको बैठने के लिए आसन दिया और ना ही उनको कोई मान सम्मान दिया. असंप्राप्त अर्घ्या सुनृत उनको ना ही अर्घ यानी जल दिया, ना ही ठीक से स्वागत हुआ और ना ही किसी ने सुनृत किसी ने उनका मधुर वचन के साथ स्वागत। वो राजा थे, राजा डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी उनका सत्कार नहीं हुआ बल्कि उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा अपमान हुआ। अवज्ञातम इवात्मानम, उन्होंने जब देखा कि मेरा इतना अपमान हो रहा है, मन्यमानश्च कोपः, तो उनको क्रोध आने लगा कि ये कैसा मुनि है, मैं पृथ्वी का राजा हूँ और आज उनके पास एक पानी का गिलास मांग रहा हूँ तो वो मुझे इतना भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और बहुत ज्यादा क्रोध आया कि मुनि जो है, ब्राह्मण जो है, उनको शिष्टाचार आना चाहिए, उन्होंने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े और उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे घर पे यदि कोई शत्रु भी आता है तो उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए। मैं तो इनका राजा हूँ, मेरे कारण मेरे राज्य में ये लोग सुखपूर्वक अपनी भक्ति कर रहे हैं तो मेरे आने से तो उनको इतना हर्ष होना चाहिए जितना भगवान के आने से होता है। मैं तो कोई उसका शत्रु नहीं हूँ, लेकिन ये अगर वेद पाठी ब्राह्मण है, इसको यदि शास्त्रों का ज्ञान है तो इसको तो शत्रुओं के आने से भी खुशी होनी चाहिए और उनका भी स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, बिठाना चाहिए, उनको जल देना चाहिए, उनको है ना स्वागत करना चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए। और मैं यहाँ पर राजा खड़ा हूँ, कितनी देर से पानी मांग रहा हूँ और वो मुझे पानी भी नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से उनकी इस स्तुति के बाद वो बता रहे हैं, वे कहते हैं, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, अभूत पूर्व सहसा क्षुतंभ्याम अर्दितात्मनः ब्रह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूतपूर्व सहसा श्रुतृंभ्याम अर्दितात्मनः ब्रह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च अभूत पूर्व सहसा श्रुतृंभ्याम अर्दितात्मनः ब्रह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। अब यहाँ पर दो शब्द ऐसे बताए गए हैं जो कि महाराजा परीक्षित को शोभा नहीं देते। वो क्या है? मत्सर, मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या किसी के प्रति तब होती है जब हम सोचते हैं कि वो हमसे आगे निकल गया, तो ईर्ष्या होने लगती है ना। जैसे हम देखते हैं किसी भी फील्ड में आजकल ईर्ष्या होती है, कोई भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें भी देखेंगे, अगर कोई आगे निकल जाता है तो फिर ईर्ष्या होने लगती है। या फिर कोई भी फील्ड में आप आगे जा रहे हो और आपसे कोई आगे जाएगा तो फिर आपको ईर्ष्या होने लगती है। लेकिन भक्ति में जो भक्तगण होते हैं ना, वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में क्या होता है कि सब कोई एक दूसरे की टांग खींचने वाले होते हैं कि वो कैसे गिरे। और भक्ति में क्या होता है, हम आगे बढ़ने के लिए किसी की टांग खींच कर आगे नहीं बढ़ते बल्कि उनके चरणों पर अपना सिर रख कर आगे बढ़ते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं हम सदैव उनसे भिक्षा मांगते हैं, उनसे याचना करते हैं, उनके चरणों पर अपने मस्तक को रखकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि वो हमें भक्ति का दान दें, हमें आशीर्वाद दें, हम पर हमें ना कृपा करें ताकि हम भी भक्ति में आगे बढ़ें। तो भक्तों के हृदय में ईर्ष्या नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान इसीलिए दे रहा हूँ, इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य न सूर्यवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभान। भगवान 9.1 में बोलते हैं तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम सूयवे, अनसूयवे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या होगी तब तक तो हम दिव्य ज्ञान श्रवण करने के योग्य भी नहीं होंगे। और यही बात भगवान श्री कृष्ण चैप्टर में 18 में अर्जुन को कहते हैं कि इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुषवे वाचम न च माम योभ्यसूयत। अब यह सूयते का मतलब होता है उसी को देना जो भक्त होगा, तपस्वी होगा। اس کو نہیں دینا جو بھکت نہیں ہوگا, تپسوی نہیں ہوگا, اور جو مجھ سے ایرشا کرے گا اس کو کبھی بھی شریمد بھگوت گیتا, مطلب وہ ویکتی تو شریمد بھگوت گیتا شرون کرنے کے یوگیہ بھی نہیں ہے جس کے اندر ایرشا ہوتی ہے. وہ بھکت بن ہی نہیں سکتا جس کے اندر ایرشا ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ برہمنم پرتیا بودھ بودھ برہمن متسرو منیورے. ابھی منیو کا مطلب ہوتا ہے کروت, یعنی کہ اب مہاراج پریکشت کے اندر ایرشا اور کروت آ رہے ہیں. کروت کب آتا ہے بھگوان بتاتے ہیں, دھیایتے وشیان پنسہ سنگستیشو پجایتے سنگا سنجایتے کاما کامات کرودھو بھی جایتے. جب ہم بھوتک وستوں کا چنتن کرتے ہیں تو انہیں پراپت کرنے کی لالسا من میں بڑھتی ہے, اور جب وہ بھوتک وستویں پراپت نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کرودھ آنے لگتا ہے. بھگوان شری کرشن 16.23 میں کام اور کرودھ کو نرک کا دوار بتاتے ہیں. تو واستو میں جو شدھ بھکت ہوتے ہیں ان کے ہردے میں کام اور کرودھ نہیں ہوتے, نہیں ہونے چاہیے. جیسے جیسے ہم بھکتی میں انتی کرتے ہیں تو ہردے کے اندر کام کرودھ اور ایرشا سماپت ہو جانی چاہیے. نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے بھکتی میں کہیں کمی رہ گئی ہے. نام جپ میں کہیں اپرادھ ہو رہا ہے تبھی ہردے میں ابھی تک کام کرودھ اور یہ ایرشا کی گندگی بھری ہوئی ہے. لیکن یہاں پر مہاراج پریکشت کی بات ہو رہی ہے جو کہ بھگوان کے شدھ بھکت ہیں, ان کے ہردے میں یہ ایرشا اور یہ کروھ کیسے اتپن ہو سکتا ہے. یہ تو بھگوان کی شدھ بھکت ہیں, وہ ویکتی وہ بھکت جن کا مطلب جنہوں نے ابھی تک سنسار میں اتپن بھی نہیں ہوئے اور ماتا کے گرو میں بھگوان کے درشن کیے. بھگوان کے درشن کرنا کیا سادھارن بات ہے؟ بھگوان کے درشن بڑے بڑے یوگی جن کروڑوں کروڑوں یوگوں کی تپسیا کے بعد بھی نہیں پراپت کرتے, اور مہاراج پریکشت ماتا کے گرو میں جو بھگوان کے ساکشات درشن کر رہے, بھگوان سوئم ان کے پاس ماتا کے گرو میں ان کو درشن دینے کے لیے جاتے ہیں, تو کیا وہ کوئی سادھارن ویکتی ہوں گے؟ وہ شدھ بھکت ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے متسرو منیورے وج, ان کو پھر بھی ایرشا ہو رہی ہے اور منیورے کرودھ آ رہا ہے. کیا معمولی سی بھوتک پیاس کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے؟ ہے نا, یہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بھکت, یہ مہاراج پریکشت وہ بھکت ہیں جنہوں نے ماتا کے گرو میں ابھیمنیو کے برہماستر کو بھی سہن کر لیا. اتنی بڑی پیڑا کو سہن کر سکنے والے مہاراج پریکشت آج چھوٹی سی پیاس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایسا سمبھو نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ ادھیرتا کیسے آ گئی, ان کے اندر ایسا کروت کیسے آ گیا. تو شری پربھوپاد جی اس کا بہت ہی سندر اتر دیتے ہیں کہ مہاراج پریکشت کے اس آچرن کا ایک ماتر اوچتیہ یہی ہے کہ بھگوان دوارا ایسی پورو نیوجت تھا, مطلب پہلے سے بھگوان نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اب مہاراج پریکشت کو مجھے اپنے پاس بلانا ہے. واستو میں بھگوان مہاراج پریکشت کو اپنے پاس بلانا چاہتے تھے, اور ان کے دوارا ہمیں یہ شریمد بھگوت کی شریمد بھاگوتم مہاپوران کا گفٹ دلانا چاہتے تھے. ہم جیسے پتت جیووں کو کا ادھار کرنے کے لیے بھگوان سدیو ویاکل ہوتے ہیں, اور اپنے کسی شدھ بھکت کو کیندر کر کے ہم تک اپنی کرپا کو بھیجتے ہیں. کبھی شری پربھوپاد جی کے مادھیم سے, کبھی ارجن کے مادھیم سے, کبھی پریکشت مہاراج کے مادھیم سے, ہم تک کسی نہ کسی پرکار سے بھگوان اپنی کرپا کو بھیجنے کا سدے یوجنا بناتے رہتے ہیں. تو یہ بھی مہاراج پریکشت کیا کا جو آج کرودھ ہے, جو ایرشا ہے, وہ بھگوان کی یوجنا سے ہو رہا ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں ابھوت پورو سہسا, ابھوت پورو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. مہاراج پریکشت کا یہ سوبھاؤ نہیں تھا ایرشا کرنا اور کروت کرنا, ان کے سوبھاؤ میں تھا ہی نہیں. وہ تو بڑے ہی کرپالو راجا ہیں, اور ابھوت پورو ان کے ہردے میں کبھی بھی ایسی بھاؤنا پہلے کبھی آئی نہیں. لیکن سہسا, سہسا مطلب اچانک سے آ گئی. اور کیسے آئی؟ شدھ بھنگیا, مطلب شدھ سے بھوک سے پیاس سے, اور ارجتا یعنی وہ بہت زیادہ پیڑت ہو گئے اندر سے. آتمنم بھوک اور پیاس سے بہت زیادہ پیڑت محسوس کرنے لگے. برہمنم پرتیہ بھوت برہمن, ہے برہمنوں اس پرکار سے بھوک اور پیاس سے پیڑت ہونے کے پرانت مت سرو منیورے وچ، وہ جو برہمن شمیک رشی جو تپسیا کر رہا تھا، مہاراجا پریکشت نے اس کے اوپر بہت زیادہ کرودھ اور ایشیا کا پردرشن کیا۔ انواد دیکھیے، ہے برہمنو، برہمن منی کے پرتی راجا کا کرودھ تتھا دویش ابھوتپورو تھا، کیونکہ پرستھتیوں نے اسے بھوکا تتھا پیاسا بنا دیا تھا۔ شری پربھوپاد جی بہت ہی سندر ریتی سے سمجھائیں گی تاتپریہ شریلا پربھوپاد دوارا۔ شری پربھوپاد کی جائے، شری پربھوپاد جی کہتے ہیں مہاراجا پریکشت جیسے راجا کے لیے ایک منی تتھا برہمن پر اس طرح سے کرودھ تتھا دویش پورن ہونا نسندیہ ابھوتپورو تھا۔ ایسا کبھی بھی وہ نہیں کرتے تھے، ابھوتپورو مطلب ان کا ایسا سوبھاؤ نہیں تھا۔ راجا بھلی بھانتی جانتا تھا کہ برہمن سادھو بالک استریوں تتھا وردھ پرشوں پرش ڈنڈ کے دائرے سے باہر ہے۔ اب یہ مہاراجا پریکشت کو ویدوں کا گیان تھا، شاستروں کے وشے میں انہیں پتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ جو برہمن ہوتے ہیں، سادھو ہوتے ہیں، بالک ہوتے ہیں، جو انوسنٹ ہوتے ہیں، استریاں ہوتی ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہ ڈنڈ سے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھما کر دینا چاہیے۔ اسی پرکار راجا بھلے ہی بھینکر بھول کیوں نہ کرے، کبھی بھی گناہ گار نہیں مانا جاتا۔ اب یہاں پر شاستر کا ایک دوسرا بھی نیم بتایا جاتا ہے کہ راجا جو ہوتا ہے اسے اگر کوئی بھول ہو جاتی ہے تو بھی اسے گناہ گار، ہم اس کو پنش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ راجا ہے نا، تو راجا کو ہم پنش نہیں کر سکتے۔ راجا کو چنا جاتا ہے، راجا وہ بنا ہے اپنے اپنے کاریوں کے انوسار، اس کو راجا وہ راجا بن گیا ہے نا۔ اب راجا کو ڈنڈ دینے کا ادھیکار پرجا کو نہیں ہوتا ہے، راجا کو بھگوان ڈنڈ دیتے ہیں، ان کو ہم گناہ گر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر راجا کو بھی یہ سب پتا تھا کہ مجھے برہمن کو ڈنڈ نہیں دینا چاہیے، اور یہاں پر آگے بتایا، لیکن یہاں پر مہاراجا پریکشت بھگوان کی اچھا سے اپنی بھوک تتھا پیاس کے کارن منی پر کرودھ ہو گئے۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ بھوک اور پیاس سے جو پیڑت یہاں پر لکھا ہوا، کشتریں بھیاد مردیتاتمنا، وہ بھوک اور پیاس سے پیڑت کیوں ہوئے تھے؟ یہاں پر شری پربھوپاد جی بولتے یہ صرف بھگوان کی اچھا سے ہوا تھا، یہ صرف بھگوان کی یوجنا سے ہوا تھا کہ بھگوان کی اچھا سے اپنی بھوک تتھا پیاس کے کارن منی پر بہت زیادہ کرودھ ہو گئے۔ اب راجا کا اپنی پرجا کو اپنا ستکار نہ ہونے یا اپنی اپیکشا کرنے کے لیے دنڈ دینا ٹھیک تھا۔ اب راجا کا، راجا ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی جو پرجا ہے وہ اس کا ستکار کرے، ان کا سمان کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتی ہے پرجا تو راجا کو حق ہے کہ اپنی پرجا کو ڈنڈ دے۔ کہ آپ جس طرح سے ماتا پتا ہوتے ہیں نا، ماتا پتا کا یدی سنتان جو ہوتا ہے وہ اپرادھ کرتا ہے، ان کی اپیکشا کرتا ہے یا ان کو ان کے ساتھ صحیح ویوہار نہیں کرتا، تو ماتا پتا کو حق ہے نا کہ وہ ماتا پتا اپنے سنتان کو پنش کریں، ڈنڈ دیں۔ اس طرح راجا کا بھی ادھیکار ہے کہ یدی اس کی پرجا جو ہے وہ اس کا ستکار نہیں کرتی تو اسے پنشمنٹ کر سکتا ہے راجا۔ لیکن چونکہ دوشی ایک منی تتھا برہمن تھا، اب راجا کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے برہمنوں کو ڈنڈ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہاں پر جو دوشی تھا وہ کون تھا؟ منی تھا، اور بالکل بھگوان میں لین تھا، دھیان میں لگا ہوا تھا۔ اتیو یہ ابھوتپورو گھٹنا تھی، ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا۔ جس طرح بھگوان کسی سے ایرشا نہیں کرتے، اسی طرح بھگوت بھکت بھی کبھی کسی سے ایرشا نہیں کرتا۔ بھگوان سب سے سب کے ساتھ سم ہیں، سب کے ہتیشی ہیں، سہرد ہیں، اس طرح بھگوان کے جو بھکت ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ ایرشا نہیں کرتے۔ مہاراجا پریکشت کے اس آچرن کا ایک ماتر اوچتیہ یہی تھا کہ بھگوان دوارا ایسا پورو نیوجت تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ آج یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مہاراجا پریکشت کو کیوں بھوک اور پیاس اتنا ستا رہی ہے اور وہ اتنا زیادہ کرودھ میں آ گئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف بھگوان کی یوجنا سے ہو رہا ہے۔ آگے سوت گوسوامی کہتے ہیں، ستو برہم رشیروں سے گتا سم उरगमृषा विनिर्गच्छन्ध नुष्कोट्या निधाय परमागतः स तु ब्रह्म ऋषिरंसि गतासुम् उरगमृषा विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः स तु ब्रह्म ऋषिरंसि गतासुम् उरगमृषा विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागतः स तु ब्रह्म ऋषिरंसि गतासुम् उरगमृषा विनिर्गच्छन्धनुष्कोट्या निधाय पुरमागत स तु ब्रह्म ऋषिरंसि। फिर उन्होंने क्या किया, स तु यानी राजा ने ब्रह्म ऋषि की अंश यानी कंधे पर, उनके कंधे पर गतासुम यानी एक मरा हुआ उरगम सर्प रुषा मतलब इतना ज्यादा उस टाइम पर महाराज को क्रोध आया, उसने सोचा शायद ये ढोंग कर रहा है और ये ढोंग करके वो जानबूझ के अपने नेत्र नहीं खोल रहा है, अभी मैं इसके ऊपर मरा हुआ सांप डालूंगा ना, फिर देखना कैसे अपने नेत्र खोल रहा है। तो उसको गुस्सा इतना आ रहा था और उस गुस्से के कारण उसने अपनी धनुष विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या यानी जा रहे थे अभी महाराज, उसने सोचा अभी जाते जाते इसको सबक सिखा के जाऊं, धनुष कोटिया यानी कि धनुष का जो आगे का हिस्सा होता है ना जहां पर नोक बनी हुई होती है, उससे निधायपुरम उससे एक मरा हुआ सांप उठाया और उस ऋषि के कंधे पर रखा और निधाय परम आगता, निधाय मना ऐसा रखा और उसके बाद अपने महल में वो वापिस आ गए। अनुवाद देखिए, इस प्रकार अपमान जनित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृतक सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया, तब वह अपने राजमहल को लौट आया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा व्यवहार किया, यद्यपि वह इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही का आदि नहीं था। अभूतपूर्व मतलब ऐसा उनका स्वभाव नहीं था, वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो बहुत ज्यादा दयालु और बहुत ज्यादा कृपावान थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने ऐसा किया कि मुनि ने उनका सत्कार नहीं किया तो उसकी बदली में महाराज को इतना क्रोध आया कि मरा हुआ सांप अपनी धनुष की नोक से उठाया और उनके कंधे पर रख दिया। ऐसा जो है उनका स्वभाव नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा उन्होंने किया क्योंकि भगवत इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उसे इस प्रकार उपेक्षित समझा यदि उसके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वह भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मेरा इतना अपमान किया है तो मुझे भी उसका अपमान करना चाहिए, जैसे को तैसा मिलना चाहिए, तो उसको भी मैं अपमानित करने के लिए मरा हुआ सांप उसके गले में डाल देता हूँ। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे कि सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक नहीं था। अगर ये दोनों सामान्य होते ना, वो मुनि नहीं होता और ये राजा परीक्षित नहीं होता, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो मुनि नहीं है, वो सत्कार नहीं कर रहा है, कोई साधारण राजा उसके पास आया है तो उसको क्रोध में वो कुछ भी कर सकता था, ये अस्वाभाविक नहीं था। लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराजा परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था, यह भगवान की इच्छा से हुआ, ऐसा बस भगवान की इच्छा से हुआ है, ये भगवान की योजना से हो रहा है। इसलिए हमको यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि महाराजा परीक्षित तो कितने ज्ञानी थे, कितने शुद्ध भक्त थे, फिर उन्होंने एक मुनि का अपमान कैसे किया, या महाराजा परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव कैसे पड़ा। ये सब भगवान की इच्छा से हुआ है, ये किसी कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये बस भगवान की योजना से हो रहा है, इसीलिए हमको उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। आगे सुत गोस्वामी कहते हैं, जब महाराजा परीक्षित घर पे पहुंचे तो उनको मन में एक ग्लानि होने लगी, दुख होने लगा कि पता नहीं मैंने ये कोई गलत कार्य किया है। क्योंकि एक उत्तम जीव जो होता है, शुद्ध भक्त जो होता है ना, जब कभी उससे कोई गलती हो जाती है ना, तो उसके मन में तुरंत ही पश्चाताप होने लगता है। ये पश्चाताप यदि हृदय में हो रहा है ना, तो हमें समझना चाहिए कि हृदय के अंदर थोड़ी बहुत पवित्रता है। वरना इस संसार में क्या होता है, ज्यादातर लोग अपराध करते हैं और अपराध के करके और भी घमंडी बन जाते हैं। देखा मैंने इसको कैसे सबक सिखाया। लेकिन ये महाराजा परीक्षित थे और उनको हृदय के अंदर ज्ञानी होने लगी। वो सोचने लगे, वे कहते हैं, एष किम निर्भृता शेष करणो मिलिते क्षण, एष किम निर्भृता शेष करणो मिलिते क्षण, मृषा समाधि राहोस्त्वीत केम नो स्यात् क्षत्र बंधु भी, एष किम निर्भृता शेष करणो मिलिते क्षण, मृषा समाधि राहोस्त्वीत केम नो स्यात् क्षत्र बंधु भी, एष किम निर्भृता शेष करणो मिलिते क्षण, मृषा समाधि राहो स्वीत किम नो स्यात् क्षत्र बंधु भी, एष किम निर्भृता शेष। एष किम यानी कि यह क्या था जो हमने अभी देखा, ध्यान निर्भृता शेष यानी मुनि जो ध्यान में था, और करणो मिलिते क्षण उनकी सारी इंद्रियां, करण कानों को भी बोलते हैं और सारी इंद्रियों को भी जब बोलते हैं तो कहा जाता है करण मिलिते क्षण, उनके कान भी नहीं सुन रहे थे, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था वो मुझे सुन नहीं रहे थे, प्लस मुझे मिलिते क्षण यानी कि आंखें भी मूंदी हुई थी, वो देख भी नहीं रहे थे, तो ये क्या था। मृषा समाधि, क्या ये समाधि झूठी थी। मृषा समाधि आहोस्त्विक, आहोस मतलब यदि ऐसा है तो केमनो स्यात् क्षत्र बंधुना, या तो फिर ऐसा है कि उनकी समाधि झूठी थी, या फिर केमनो स्यात् क्षत्र बंधु भी, क्षत्र बंधु बना निम्न क्षत्रिय द्वारा। अभी ब्राह्मण का जो होता है वो ऊंचा लेवल होता है और जो क्षत्रिय होता है उसके बाद का होता है। तो राजा को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, उसने सोचा था अभी मैं आंखें खोलूंगा या इसकी बात सुनूंगा तो मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी। अभी क्षत्रिय तो मुझसे नीच कुल वाले होते हैं, तो हम तो ब्राह्मण हैं, उच्च कुल वाले हैं, तो मैं क्यों उनकी सेवा करूं, इससे बेहतर है मैं मृषा समाधि झूठी समाधि में बैठा रहता हूं, और वो भले समझे कि ऋषि समाधि में, ऐसे देख के चला जाएगा और मुझे उसकी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे एष किम निर्भृता शेष करणो मिलिते क्षण, कि पता नहीं ये जो उसने समाधि लगाई हुई थी वो सच की थी या मृषा समाधि थी, और वो ये सोच रहा था कि मुझे इस राजा की सेवा न करनी पड़े, इसलिए उसने नेत्र बंद किए हुए थे। अनुवाद देखिए, लौटने पर वो सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र कर तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में था, अथवा वह निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचाया था। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा। मन में उसको ग्लानी हो रही थी कि मुझे नहीं करना चाहिए था, अतः वह सोचने लगा कि क्या साधु सचमुच समाधि में था अथवा बहाना बना रहा था जिससे उसे क्षत्रिय राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा पद में उससे निम्न था, या फिर वो सोच रहा था कि पता नहीं वो सच्ची में समाधि में होगा तो मैंने कितना बुरा किया, पता नहीं उसकी सच्ची वाली समाधि थी या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जब उत्तम जीव कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत ही पश्चाताप होने लगता है। महान व्यक्ति अपने गुनाह को स्वीकार करता है, अपने अपराध को, और मन में वो पश्चाताप करने लगता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी यह नहीं मानते हैं कि राजा का यह कार्य उसके विगत दुष्कर्मों के कारण था। हम जो भी कार्य करते ना, उसका संबंध जो होता है हमारे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन राजा परीक्षित का ये कार्य कोई भी जो हमारे शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं, जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, वो इस कार्य को महाराजा परीक्षित के दुष्कर्मों का परिणाम नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं, यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। क्यों बनाई थी, ताकि राजा को भगवान अपने धाम में बुलाना चाहते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस दुष्कर्म के लिए एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक कली के प्रभाव से श्राप देगा। ये योजना श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की क्या योजना थी कि राजा एक कार्य ऐसा करके आएगा। राजा ने कोई गलती नहीं की है, उस राजा को कोई भी यहाँ पर अपराधी नहीं मान रहा है। राजा ने तो स्वाभाविक ऐसा किया और उसको ये देखना था कि वास्तव में ये मुनि जो है वो सच्ची समाधि में है या ढोंग कर रहा है, क्योंकि इस तरह से तो फिर सारे समाधि ये मुनि लोग हैं ना वो समाधि का ढोंग करने शुरू हो जाएंगे। तो वो राजा देखना चाहता था और उसको अधिकार भी था। लेकिन योजना भगवान की क्या थी कि राजा इस तरह से जब क्रोध करेगा तो फिर राजा के इस दुष्कर्म के लिए एक अनुभव विहीन बालक, ब्राह्मण बालक जो इन शमीक ऋषि का पुत्र होगा, वो कली के प्रभाव से श्राप देगा। अभी कली का प्रभाव किस पर आया है, राजा के ऊपर नहीं आया है, कली का प्रभाव उस अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक पे आया है। वास्तव में भक्तों, यहाँ पर हमें श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कलयुग का सबसे पहला प्रभाव ब्राह्मणों के ऊपर है। आज ब्राह्मण जो है वो अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं और फिर केवल धन अर्जित करने के लिए, अपने तिजोरियां भरने के लिए ही ये शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो ना जीवों को शिक्षा दे, ताकि वो साधारण जो दूसरे जो चार वर्ण और आश्रम हैं ब्राह्मण के अतिरिक्त, उनको शिक्षा देकर उनको एक वास्तविक जीवन के लक्ष्य की ओर लेके जाए। लेकिन ब्राह्मण अब अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये कली का प्रभाव किसके ऊपर है, ब्राह्मण बालक के ऊपर। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह राजा शुभ कार्य के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़ सकेगा और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा, जो भगवान का ग्रंथ अवतार है। इस ग्रंथ अवतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेषतया ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहारी सूचना प्राप्त होती है। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी इस लीला को ठीक तरह से समझता है वह संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और भक्ति के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठ होता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी इस भगवान की योजना को विषय में बता रहे हैं कि जब एक बालक उनको श्राप देगा तो फिर सारा जो मोह माया है वो सब छोड़ देंगे, अपनी जन्मभूमि छोड़ देंगे, राज्य को छोड़ देंगे और सुखदेव गोस्वामी की शरण में जाएंगे और सुखदेव गोस्वामी उनको श्रीमद् भागवतम महापुराण का उपदेश करेंगे, जो भगवान का साक्षात्कार ग्रंथ अवतार है और उसके अंदर जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जो भगवान की दिव्य कार्यकलाप है, उनको श्रवण करने से जीव के अंदर से भौतिक आसक्ति, भौतिक काम सब समाप्त हो जाएगा और वो भक्ति के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित होगा। हम जैसे पतित जीवों के उद्धार करने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्त के साथ यह लीला कर रहे हैं और योजना बनाकर, हम जैसे अभक्तों के लिए, अपतितों के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण को प्रस्तुत करने का प्लान हो रहा है यहाँ पर। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शुद्ध भक्ति की संसारी निराशा उसे दिव्य स्थान प्रदान कराने के लिए निमित्त होती है। अब यहाँ पर जो ये बात श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, वो बात अगर हमें समझ में आ जाए ना तो समझो कल्याण हो जाए। संसारी निराशा जो होती है भौतिक जगत में, कभी कभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं फिर भौतिक निराशा होती है, किसी वस्तु या व्यक्तियों से हमारा वियोग होने लगता है, या फिर धन खत्म हो जाता है, जो घर वाले हैं वो प्रेम करना छोड़ देते हैं। तो संसारी निराशा क्यों होती है? दिव्य स्थान प्रदान करने के निमित्त होती है। लेकिन हम अभी तक क्योंकि कच्चे भक्त होते हैं इसलिए भगवान से कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं कि भगवान आपकी भक्ति में आगे बढ़े, देखो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे दिव्य स्थान प्रदान करने के निमित्त होती है। वो भगवान उसको उठाना चाहते हैं, भौतिक आसक्ति को खत्म करा के भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए ये हो रहा है। तो महाराज परीक्षित के साथ आज जो हो रहा है या उनको अभी जो श्राप मिलने वाला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा कर रहे हैं अपने पास बुलाने के लिए। इसलिए अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि श्रीमद भगवद गीता का अवतार कराने के लिए हुआ था। भगवान ने ये महाभारत का युद्ध जो करा ना, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि भगवान हम सबको श्रीमद् भगवद गीता देना चाहते थे। श्रीमद् भगवद गीता का अवतार कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न किया, जिसके कारण हमें श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त हुई। उसी प्रकार राजा को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवतम का अवतार कराया गया। बस ये श्रीमद् भागवत और भगवद गीता प्रदान करने के लिए भगवान ने पहले दादा को और अब उनके पोते परीक्षित महाराज को एक निमित्त बनाया है ताकि हम पर कृपा हो सके। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भूख तथा प्यास तो मात्र दिखावे रहे, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलित ताप से विचलित नहीं हुए, तो फिर भूख और प्यास से क्या विचलित होंगे? तो ये तो महज एक बहाना था। राजा की यह विषादपूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। ऐसा होना मतलब राजा का स्वभाव नहीं था कि वो इतने विचलित होते, इतने क्रोधित होते, इतनी ईर्ष्या करते, लेकिन ये भगवान की योजना है तो भक्त तो भगवान को पूरी तरह से सरेंडर होता है, तो इसलिए हो रहा है। महाराजा परीक्षित जैसे भक्त ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। ऐसे छोटी छोटी आपदाएं तो भक्तों के ऊपर बहुत सारी आती हैं, उनके लिए महाराजा परीक्षित जैसे शुद्ध भक्त विचलित कभी भी नहीं होते हैं। अतएव इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। जो कुछ हो रहा है अभी वो सिर्फ भगवान की योजना के द्वारा हो रहा है। क्या हो रहा है कि महाराजा परीक्षित इतने शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी क्रोध कर रहे हैं और क्रोध करके एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डालकर अब वो जब घर पे गए तो उनको पश्चाताप भी हो रहा है कि पता नहीं मैंने कितना गलत कार्य किया है। ऐसा ना हो कि वो जो ऋषि था वो एक सच्ची समाधि में हो और फिर मैंने उसको उनके साथ ऐसा किया। फिर वो ऐसे सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो झूठी समाधि के कारण ऐसा कर रहा था ताकि मुझे किसी राजा को क्षत्रिय जो कि मुझसे निम्न कोटि के हैं उनका ना सत्कार करना ना पड़े, इसलिए वो तो ये सब अभी राजा सोच रहे हैं। इसके बाद क्या होता है हम सब साथ में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को डेली परफेक्ट कर सकूं। हरे कृष्ण।